આજે આપણે સૌ જે પર્વાથી રાજ પર્વ ની એક વર્ષથી રાહ જોતા હોઈએ અને આજ આપણે એક વર્ષ થયા રાહ જોતા હતા અને 8 દિવસ થયા જે દિવસ ની રાહ જોતા હતા. વો દિન ક્ષમા પર્વ સંવત્સરી પર્વ ઓર આજ કા દિન અપને પૂરે જીવન કા બડા મહત્વપૂર્ણ દિન બન સકતા હૈ. જ્ઞાનીઓ કે જ્ઞાન મે એ આયા હૈ કે જ્યાદા સે જ્યાદા લોગો કે આયુ બંધ કા દિન સંવત્સરી દિન હોતા હૈ. તો પરમાત્મા ને એસા હી આયોજન કર દિયા કે ઉસ દિન કો પરમાત્મા મહાવીર કો માનને વાલા જેને શાસન કી આરાધના કરને વાલા ઓર જિસકો ધર્મ કી શ્રદ્ધા હૈ એસે જીવ કહીં ભી હો કિસી ભી હાલત મે હો લેકિન આજ કે દિન અપને મન કો વચન કો ઓર કાયા કો સાવધ્ય યોગ યાને કે પાપકારી કાર્યો સે અલગ રખેગા દૂર રખેગા ઓર વહાં સે અલિપ્ત રહેને કી કોશિશ કરેગા. ઇસલિયે આજ હમ સોચ સકતે હૈ કે પૂરે વિશ્વ મે કહીં ભી કોઈ જૈન હોંગે તો આજ કા દિન વો કૈસે મનાતા હોગા, વો જિધર ક્લબ મે હોગા, હોલીડે કેમ્પ મે હોગા, યા કહીં એસી કોઈ જગા પે જહાં મનોરંજન હો રહા હો, એસી જગા પે જ્યાદાતર નહીં દિખેગા. કોઈ કમ ભાગી હો સકતા હૈ કે જિનકો જિન શાસન મિલા લેકિન જિન શ્રદ્ધા નહીં મિલી, તો એસે લોગો કો અપવાદ રૂપ જિનકે બાકી કે કહીં ભી જૈન હો તો આજ કા દિન વો અપની આત્મા કે કરીબ આત્મા કે સમીપ ઓર આત્મા કે અંદર રહેને કે લિયે ઉપવાસ તપ કા આશ્રય લે લેતે હૈ. ઉપ માને આત્મા ઓર વાસ માને બચના, તો આત્મા કે સાથ બચને કે લિયે આજ કા દિન હમ આરંભ સમારંભ સે દૂર રહેંગે ઓર કઈ જગા આજ કા દિન મારવાડ મે રાજસ્થાન મે દયા પાલને કા દિન છે. દયા પાલના જીસકો હમ દેશા વગાસિક વ્રત કે રૂપ મે જાનતે હૈ, તો યહાં ભી એસા હમ કર સકતે હૈ કે જીસકો પૂરા દિન ઇધર રહેના હૈ વો અપને આપ કો પૂરા દિન સામયિક વ્રત મે રખ સકતે હૈ. એક લો, દો લો યા તીન લો, બાદ મે જબ આપ કો શારીરિક કર્મ સે બાથરૂમ વગેરા કરના હૈ તો ઉસ સમય હમ સામયિક કા પૂર્ણ કરકે ઉસકે બાદ વો ક્રિયા કરકે ફિર સામયિક મે આ સકતે હૈ. ઇસ તરહ સે દિન મે 10 સામયિક કરને વાલા દેખા વગા કે વ્રત મે આ જાતા હૈ. ઓર શર્ત યે રહેગી કે જબ તક બન પાએ, અગર આજ હમકો જરૂરત ન પડે તો હમે પાણી કો अग्नि को ऐसे सावध योग को वनस्पति को छूना भी नहीं है। यहाँ बैठे हैं, क्या आपको जरूरी है कि आप उठ के लाइट करो या उसके कुछ पानी वगैरह का आरंभ करो, बाथरूम का आधार रख के बाकी पूरे संसार के जीवों का हम अभयदाता बन सकते हैं। तो जिसके मन में आए उसको मेरी ओर से निवेदन है कि जो और कुछ काम नहीं है, वापस घर जाना नहीं है और यहाँ ही अपना दिन बिताना है, तो सावध्य योग से यानी के पापकारी प्रवृत्ति से दूर रहने की कोशिश करे और जितना भी बन पाए अपना समय ज्ञान में, ध्यान में, और आप साझे कर सकते हो, आप कुछ भी जाप आदि कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी यहाँ हूँ, मैं आपको मदद करूँगी, मैं आपके साथ बैठूंगी, और आप जितना बन पाए उतना आज का दिन अभयदाता बन के रहने की कोशिश करना। और आज का दिन क्षमा पर्व कहा जाता है और संवत्सरी का पर्व क्षमा दिन के रूप में मनाया जाता है। पूरे संसार की हिस्ट्री में देखो तो ज्यादातर दिन युद्ध के दिन होते हैं, कलह के दिन होते हैं, झगड़े के दिन होते हैं, विजय के दिन होते हैं। कोई भी राष्ट्र अपना स्वतंत्र दिन मनाता है, लेकिन कभी किसी ने अपना अर्पण दिन मनाया हो ऐसा हिस्ट्री ने देखा है? किसने हार खाई, किसको झुकना पड़ा, वो ये दिन को छिपाना चाहता है, वो जगत के सामने रखना नहीं चाहता, वो लज्जा अनुभव करता है कि मुझे क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा, छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। और परमात्मा की विशेषता देखो, परमात्मा का विशेष देखो, जब हम झुक गए, जब हम हार गए, जब हमने अपना पकड़ यानी कि अपनी जड़ता छोड़ दी, उस दिन को परमात्मा ने विजय का दिन बताया। तो आज का दिन आत्म विजय का दिन है, हमें संसार से लड़ना नहीं है, संसार से कुछ पाना नहीं है, संसार से कुछ फरियाद भी नहीं है। हमारी फरियाद किसके साथ है? अपने आप के साथ है। हम गुलाम है तो किसके गुलाम है? हम बुजुर्गों के गुलाम नहीं है, बहुत सास की गुलाम नहीं है, कोई बुजुर्गों से हमें बंधन नहीं मिला है, समाज से हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, और जो भी बंधन लगता है वो बंधन हमारे कर्मों का बंधन है। तो ऐसे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए आज का दिन क्षमा पर्व कहा जाता है। और उस दिन हम साल में एक बार, वर्ष में एक बार आता है और एक दिन मनाते हैं, तो उसको संवत्सर कहा जाता है। संवत्सर माने वन ईयर, उसको संवत्सर कहते हैं। तो सांवत्सरिक पर्व माने साल में एक दिन का पर्व। तो ऐसे पर्व के दिन हम परम पिता परमात्मा की चरणों में, अभी आपने स्नात्र वगैरह जो पूजन विधि था वो पूजा करके पावन मन से हम यहाँ अभी परमात्मा की शरण में आए हैं। अभी ऐसा हम समापन करेंगे कि हमारे पूरे साल का नहीं, अनंत काल का, अनंत जन्मों का जो मन में कुछ भी बचा खुचा भी संसार के प्रति का, जगत के प्रति का, शिवों के प्रति का जो भी द्वेष भाव है, उन सब का हम अभी स्नान कर रहे हैं। ऐसे पावन दिन पर परमात्मा का स्मरण एक नमस्कार महामंत्र के रूप में, मंगलाचरण के रूप में ऐसे करें कि जैसे हम संवत्सरण में पहुंच गए हैं। हम कहाँ है अभी? तो मायामी के जैन सेंटर में यानी के परमात्मा जी के सामने है, लेकिन ये प्रतिमा जी में परमात्मा का हमने आरोपण किया है। लेकिन आँख खोलने के बाद हम सोचेंगे कि जैसे सिमंदर स्वामी का संवत्सरण है और वहाँ हम उपस्थित है, अगर हमारे सामने साक्षात परमात्मा आ जाए तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम कैसे भाव युक्त हो जाएंगे, कैसे मनोमुग्ध हो जाएंगे, हमारा विनय कैसे उमड़ आएगा, हमारी आंखें मुंद लेंगे, हमारे हाथ जुड़ जाएंगे, हमारा मस्तक नतमस्तक हो जाएंगे। इस तरह से एक नमस्कार मंत्र का स्मरण करके हम साक्षात संवत्सरण में पहुंच जा सकते हैं। शुरू करते हैं, आंखें मुंद लेना, हाथे जोड़ लेना, स्थिर आसन रखना, बन पाए तो जरा भी शरीर का हलन चलन न हो उसका ध्यान रखना। त्रियोग की शुद्धि के साथ नमस्कार महामंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, रटन कर रहे हैं और आराधन कर रहे हैं। ओम नमो हरि हंसारम, ओम તો પંચન મો સારો સાવ પાવ પણાતનો મંગળાનંદ સાવેશે પદમં હવઈ મંગળં પદમં હવઈ મંગળં સર્વ પાવ પણાસન સર્વ પાપ કા પ્રનાશ કરને વાલા એસા એક નમન અગર હમારે જીવન મે આજ હો જાય તો જ્ઞાની કા યે વચન નિષ્ફળ નહીં જાયેગા. પરમાત્મા ને પાંચ પદ કા જો ચાર પદ મે મહાત્મ્ય બતાયા હૈ ઉસમે કહા ગયા હૈ કે મંગલાણમ ચ સવેસિમ. સંસાર કે હર મંગલ મે જીવન કે હર મંગલ મે સર્વશ્રેષ્ઠ મંગલ જો હૈ એ પાંચ પદ હૈ, એ પંચ પરમેશ્વરી તત્વ હૈ. ઓર હમારા પ્રયત્ન એ રહેગા કે ન હમ સિર્ફ રિસાઇટ કરેંગે, રટન નહીં કરેંગે, હમ સ્મરણ ભી કરકે રુક નહીં જાયેંગે. હમે ક્યા કરના હૈ, આરાધન કરના હૈ. તો હમારી ભાવના એ હોની ચાહીએ કે અગલે જન્મ મે હમારા સ્થાન ભી એ પંચ પરમેશ્વરી મે આ જાય. પંચ પરમેશ્વરી મે કબ આ સકતા હૈ, જબ હમ છઠ્ઠે સાતવે ગુણ સ્થાનક મે પહોંચે. તો છઠ્ઠા ઓર સાતવા ગુણ સ્થાનક સંતો કા હૈ, મહંતો કા હૈ, મહાત્માઓ કા હૈ. એસે સ્થાન કો પાને કે લિયે પહેલે હમે ક્યા કરના પડેગા, ક્ષેત્ર વિશુદ્ધિ કરની પડેગી. કભી કિસી કો કુછ બોના હૈ તો ઉસકે લિયે ક્ષેત્ર કો યાને ખેત કો ક્યા કરના પડતા હૈ, સફાઈ કરની પડતી હૈ. ગુજરાતી માં એને ખેતર ખેડવું કહેવાય. ખેતર ખેડ્યું એટલે શું, મોટા પથરા વગેરે, કાંટા કાંકરા વગેરે, જાડા ઝાંખરા વગેરે, જે બધું ભૂમિની સમતળતા સપાટીને સંતુલન ન કરવા દે અને સમાનતામાં ખપી લાવે એવા પદાર્થોને પેલા શું કરવા પડે, દૂર કરવા પડે. અને આવું ખેડાયેલું ખેતર એમાં જયારે વરસાદનો આવિર્ભાવ થાય એટલે કે વરસાદ એના ઉપર વરસે એ વખતે ભૂમિ શું થઈ જાય, ભીની થઈ જાય. અને આ ભીની થયેલી ભૂમિ એ કૂણી થઈ જાય, કોમળ થઈ જાય. અને ત્યાર પછી જો એમાં બીજનું વાવેતર કરવામાં આવે, ઇસકે બાદ જો બીજ કો બોયા જાતા હૈ વો બીજ કો અંકુરિત હોને મે કોઈ અંતરાય નહીં રહેતી. ઇસી તરહ સે આજ હમે કિસકા બોના, શું વાવવું છે આજે આપણે આત્મામાં નવકાર મંત્રમાં સામિલ થવા માટે, નમસ્કાર કે પાંચ પદ મે સ્થાન પાને કે લિયે અપની ભૂમિકા કો શુદ્ધ કરકે સમારૂપ બીજ કા જો હમ પ્રદાન કર રહે હૈ ઉસકે લિયે ક્ષેત્ર વિશુદ્ધિ કે રૂપ મે આજ કા દિન હમારે મન વચન કાયા કો હમ શુદ્ધ રખેંગે. સાવધ યોગ સે જબ તક બન પાયે, જહાં તક બન પાયે હમ રોકે રખેંગે. ઓર ફિર પરમાત્મા કી આજ્ઞા સે આજ શામ કો હમ પ્રતિક્રમણ કરેંગે. લેકિન પરમાત્મા ને બતાયા હૈ કે એ પ્રતિક્રમણ શામ કો હી હો, એસા જરૂરી નહીં હૈ. એ ક્રિયા આવશ્યક હૈ. સાંસ કબ કબ લેની હોતી હૈ, એસે હોતી સુબહ લો ઓર શામ કો લો, બીચ મે ના લો તો ચલેગા. પાપ કબ કબ બનતે હૈ, પાપ કર્મ કબ કબ બંધતે હૈ, હર સંગ હર સમય બનતે હૈ. તો પ્રતિક્રમણ ભી હર સમય હર ક્ષણ હોના ચાહીએ. લેકિન હમારે જૈસે પ્રમાદી જીવો કો એસા અપ્રમત યોગ નહીં હૈ, મતલબ હમ ઇતને સાવધાન નહીં હૈ. ઇસલિયે હમારે લિયે એસી વ્યવસ્થા દી ગઈ હૈ કે જો જીવાત્મા પૂરા જાગૃત હોગા, અપ્રમત હોગા ઓર અપને જીવન કે લિયે જીતના જ્યાદા કેરફુલ યાને કે ચિંતા કરને વાલા હોગા, વો દિન મે હર સમય કમ સે કમ એક બાર દૈનિક યાને દેવસ્ય પ્રતિક્રમણ કરેગા. જીસકો યે પતા હૈ કે રાત કો ભી હમ નિંદ મે કર્મ બાંધ લેતે હૈ, વો સુબહ કા રાઈ પ્રતિક્રમણ ભી કરેગા. ઓર અગર એસા ન બન પાયા તો કમ સે કમ વો પક્ષી કા પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ કરેગા. ઓર પાક્ષિક સે ભી ગયા તો આખિર મે ચોમાસી કરેગા. ચોમાસી પ્રતિક્રમણ ભી ન બન પાયા તો આખિર મે समत्सरी यानी के वार्षिक प्रतिक्रमण। तो आज कैसे भी लोग हैं, जागरूक हो और जागरूक हो, सावधान हो और सावधान हो, हर एक के लिए आज का दिन ऐसा है कि अगर आज का दिन निकल गया, अगले साल समत्सरी का प्रतिक्रमण किया है और ये अगर ये साल ये वर्ष हमने प्रतिक्रमण नहीं किया तो तत्व का विज्ञान कहता है कि अनंतानुबंधी कसाय की जो स्थिति है, क्रोध मान माया और लोभ, ये चारों कसाय जब बंधे तब उसके ऊपर अगर एक साल का, एक वर्ष का, एक ईयर का टाइम निकल गया तो वो कर्म निकाचित बन जाएगा। हमारे कपड़े पे दाग लगा है, चाय पीते पीते या कॉफी पीते पीते कुछ बूंदे गिर गई, हम सावधान नहीं थे, उसी समय नहीं धोया, लेकिन जैसे ही ध्यान गया तो घर जाके पहला काम किया कि वो दाग को निकाल दे। तो हो सकता है कि पहले क्षण में धोया होता तो बिल्कुल साफ हो जाता, अगर घर जाके धोया तो थोड़ा दाग उसका कलर वहाँ रह सकता है, और कभी कुछ दिन के बाद ध्यान में आया तो दाग को निकाल सकते हैं, लेकिन उस जगह पे निशान कुछ बने रहेंगे। लेकिन अगर एक साल निकल गया फिर वो धोने को गए तो निकलेगा, तो उसमें किसने काम किया, काल ने ही काम किया, समय ने ही काम किया। तो काल का एलिमेंट ज्ञानियों के ज्ञान में पांच समवाय में बड़ा मायना रखता है। सैनियों को भी जरूर इतना करना चाहिए कि कर्म कैसे बनता है, कैसे छूटता है, और इसके दृष्टि जो स्थिति है कि जिसमें उदय काल से पहले प्रोबेशन टाइम में हम कर्म को कैसे कम यदि या नष्ट भी कर सकते हैं, उसका विज्ञान थोड़ा बहुत समझना चाहिए। वर्तमान में आज इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जो ज्ञान करके हमें मार्ग दिखा दिया है कि कम से कम साल में एक बार भी अंतःकरण से प्रतिक्रमण करने वाला अपने कर्मों को क्या कर सकता है, पूर्ण रूप से अनंतानुबंधी करने से रोक सकता है। मतलब जो जिसके अनंत अनुबंध हो, हमारे मन में कुछ गलतियां है, कुछ अनबन है, कुछ अभाव है, दूसरों के प्रति द्वेष है, दूसरों के प्रति कुछ गड़बड़ चलती है, ये सब चीजें हमारे सब कॉन्शियस में नहीं चली जानी चाहिए। जैसे साइंस बताता है, मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ काल तक ऐसे भूल को या ऐसे कोई भाव को दबा के रखो, होते होते वो सब कॉन्शियस में चला जाता है, फिर हमको लगता है कि हम तो उसको भूल गए हैं, लेकिन भूल नहीं गए हैं, चुप गया है। क्या है, भूल नहीं गए हैं। अभी अभी कभी ऐसा होता था कि कुछ बच्चे को 25 साल में या 30 साल के बाद कुछ सर में दर्द हुआ और कुछ ऐसे लगने लगा कि इसमें बड़ी भारी पीड़ा हो रही है, तब जाके डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसको कुछ पूछना शुरू करेंगे, तो फिर ये भी पूछते हैं कि आपके छोटेपन में मस्तक में कुछ इजा हुई थी, आप छोटे थे तो क्या गिर गए थे, हो सकता है कि उस दिन कुछ ब्लॉटिंग हो गया हो, उस दिन कुछ ट्यूमर हो गया हो और हमने नजरअंदाज कर दिया हो, अब जाके वो अंदर ही अंदर क्या हो गया हो, ग्रोथ हो गया हो, तो बड़ी नुकसानी हो सकती है। उसी तरह से हमारा साल भर में जो भी मन में भाव आया, वो भाव को अगर हम नजरअंदाज करके आज के दिन निकाल न देंगे तो ज्ञानी कहते हैं सब चीजें अनंतानुबंध में चली जाएगी, फिर उसको निकालना बस की बात नहीं है। तो हमारे लिए आज का दिन पावन दिन है, तो इससे पावन दिन के हमारे दिन पर हम परमात्मा का शुक्रिया गुजार करते हैं कि परमात्मा ने हमें ये मौका दिया। तो आज का दिन तप का तो दिन है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए शाम तक रोने का दिन है। कैसे, ऐसे तो बहुत रोए हैं, रोए तो क्या रोए हैं, अपने अपने दुख रोए हैं। आज तक हमने रुदन किया, कल्पांत किया, रोना आया तो किस बात से आया, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसी बात क्यों होती है, उसने मुझे इतनी पीड़ा क्यों दे दी, उससे मैं इतना तिरस्कृत क्यों हूँ, समाज में मेरा कोई स्थान क्यों नहीं है, लोग सब मेरे प्रति ऐसा क्यों करते हैं, यही बात पे रोए ना। आज का दिन रोने का जरूर है, लेकिन रोना है तो अपनी गलतियों पे रोना है। आज शाम तक हमें अपनी गलती ही ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। संसार की, शरीर की, दूसरों की गलतियां ढूंढते ढूंढते अनंत काल निकल गया। और ये गलतियां अगर निकल भी आई और हमने उसको समझ भी लिया कि इसने किया था, इसकी वजह से ये हुआ था, तो आखिर में हमें फायदा क्या देगा? दुर्भाव ही बढ़ेगा, कर्म निकाजित बनता जाएगा, द्वेष भाव बढ़ता जाएगा, आखिर में ग्रोथ होगा। वो ग्रोथ किसका होगा? वेर का ग्रोथ होगा। परमात्मा ने कहा है, वेरानुबंधानी महाभयानी। ये संसार में सबसे ज्यादा भयभीत रखने वाला कोई तत्व हो तो क्या है? वेर का अनुबंध है। वे बेरियों से मत डरे, बेर को बांधते वक्त जो मोमेंट आती है, जो मन में भाव आता है, उससे डरना है। तो आज का दिन रोने का है। इसके बाद आता है धोना। धोना माने जो कचरा जम गया है, हमारे जीवन में आ गया है, उसको क्या करना है? धोना, यानी कि प्रायश्चित करना, सफाई करना। रोने में आलोचना है, देखना है। पहले देखो, ऐसे देखा जाए ना तो किसी ज्ञानी ने कहा है कि एक अंधेरा रूम हो, घना काला अंधेरा हो और उसमें एक काला पर्दा हो और उसके ऊपर काली सीपी एंट चली जा रही हो, उसको देख लेना हो सकता है कि आसान हो, लेकिन अपने अपराधों को, अपने भूलों को और अपने दोष को देखना इससे भी भारी बहुत मुश्किल है। आप इसके घने अंधेरे में काले पर्दे पे चली गई, चली जाती हुई चीटी को कभी बारिश में जब से देखो तो देख सकते हो, लेकिन ज्ञानी कहते हैं अपने अपराधों को देखना, अपनी गलती का स्वीकार करना, अपनी भूल को मानना। एक खास करके हम पांचवे आर्य के वक्र और जड़ जीवों के लिए कितना मुश्किल है। तो ऐसे मुश्किल को आसान करने वाला आज का दिन है। अगर हम सिंहासन के दृष्टांतों को देखेंगे, सिंहासन के महिमा को जानेंगे और परमात्मा की आज्ञा का ख्याल करेंगे तो हमारे लिए एक पूरी फॉर्मूला परमात्मा ने बताई है अपनी गलतियों को कैसे देखना। तो इसके बाद आएगा पहले देखना। तो अगले दिन हमने जो देखा था वो आलोचना थी। इसके बाद की बड़ी आलोचना रोना, जब दिखाई दिया तो रोना। इसके बाद आता है धोना। अभी क्या करना है? ऐसे दोषों को धोना है। तो ऐसे धोने के बाद यानी कहते हैं पहले सोऊं, रोऊं और सोऊं। सो आलोचना करवी एटले सोऊं, पछी रोऊं एटले प्रायश्चित करवू, अने धोऊं एटले शू करवानू? दंड लई लेवो, अपने आप से अपनी आत्मा को दंड देके सुधार लेना। तो ऐसे प्रायश्चित शब्द का दो अर्थ होता है। पश्चाताप वो सिर्फ देखने के बाद होने वाला एहसास है, और प्रायश्चित का अर्थ होता है कि कुछ दंड लेके अपने आप को सुधार लेना। तो इसकी जरिए हम देखेंगे कि परमात्मा की आज्ञा में ये बात कही गई है। उत्तराध्ययन जी आगम में परमात्मा को पूछा गया था कि प्रायश्चित करने बनते जीवे किम जनाई, हे परमात्मा प्रायश्चित करने वाले जीव को क्या फायदा होता है, क्या मिलता है? तो परमात्मा का जवाब है कि पाव कमम विशोही जनयी पाप कर्मनी विशुद्धि थाई से। पाप कर्मनी विशुद्धि बीजा कोई रीते थी सकती नहीं। पाप कर्म धोवा माटे मात्र एक ज उपाय छे कि उसका स्वीकार करना, फिर उसका एहसास करना और फिर इसके बाद स्वयं को दंडित करके, ये पीड़ा नहीं है दंड लेना, ये प्रायश्चित वाली बात में कई बोलते हैं कि ये तो दमन है, ये दमन नहीं है, ये समन है। क्या होता है दमन करना? माने जबरदस्ती न स्वीकार करके भी किसी तरह से उसको रोकना। लेकिन समन किसको कहते हैं? कि एहसास हो गया, खुद निकालना चाहते हैं, खुद अपने आप को रोकना चाहते हैं। उपवास ये दमन है कि समन है? भूखा रखना और भूखा रहना, भूखा रहने में भूखा रहना पड़ा तो दमन हो सकता है, लेकिन जब हम अपने आप को आज हमको नहीं खाना है तो इसमें क्या है, आहार संज्ञा का उपशमन है। कैसे शमन करके अपनी आत्मा को आज हम पवित्र करेंगे, ऐसे मार्ग में परमात्मा ने हमें कबूलात का दिन है, जीवन भर हमने वकालत की है। क्या किया है, जीवन भर हम वकालत करते हैं। कभी किसी ने बताया ये आपने इसे क्यों किया तो क्या करे, उस टाइम ऐसा ही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, मतलब हमने एक्सक्यूज किए, जीवन भर हमने अपनी गलतियों को जस्टिफाई किया है और एक्सक्यूज ही तैयार किए है। आज का दिन क्या है, वकीलात का दिन नहीं है, कबूलात का दिन है, एग्री होने का दिन है। एग्री होना कितना मुश्किल है मालूम है, इतने छोटे बच्चों को भी, आप कभी उसने कुछ गलती कर दी हो और उसको बोलो कि बेटा बोल दे सॉरी, बेटा सॉरी बोलेगा, मुश्किल से बोलेगा, मुश्किल से बोलेगा। इतने बचपन से भी ये बात हमको दिखाई देती है, चुप जाना, सॉरी बोलना और गलती का स्वीकार करना बड़ी मुश्किल बात है। छोटा बच्चा थोड़ा अभिमान करता है, हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा अहम भी बड़ा होता है, हम जितने बड़े हो गए उतना हमारा अहम बड़ा होता जाता है। तो ऐसे अहम को निकालने के लिए परमात्मा ने बोला कि जिसने पहला हाथ लंबा किया वो जीत गया। हम लोग क्या बोलते हैं, अपने गुजराती में केवच चले कि कोई वेत नमे तो हूँ हाथ नमो, शुभ के बता कोई वेत नमे तो हूँ हाथ नमो, पर ए वेत नमे ने पच्चीस तो हाथ नमे सेवा कशु विशेष नहीं। तो जिसने पहला हाथ लंबा किया, जिसने पहला हाथ उठाया माफी मांगने को, वो ही जीत गया। माफी देना इसमें हम बड़पन समझते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कि माफ करने वाला तब तक तू होता है जब तक तू ऐसा समझता है कि ये गुनाह दूसरे का है। माफ करना इसका मतलब ये हो गया ना कि गलती किसने की थी, ये गलती इसकी है। तो जब गलती को गलती मानने के बाद हम माफ करने वाले बन जाते हैं तो ज्ञानी कहते हैं यहाँ तेरी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। ये संसार में हमारे साथ जो भी हो रहा है वो किसी व्यक्ति के रूप से या किसी संयोग के रूप से हमें दिखाई देता है। हमारे साथ जो भी हो रहा है उसमें निमित्त भूत कौन होता है, कोई व्यक्ति होती है या तो कोई संयोग होते है। तो हम पूरा जिम्मा इसके ऊपर थोप देते हैं, अगर ये व्यक्ति मेरे आगे नहीं आता तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। सोचो, हो सकता है, हो सकता है वो व्यक्ति नहीं होता तो और कोई जरूर होता। ये कर्म का विधान है, ये कर्म का नियम है कि निमित्त बन के कोई भी आए। हम लोग सभी इसी डॉक्टर से जाते हैं ना तो वो लोग कहते हैं कि तेरे दर्द की जड़ क्या है, तो कहते कुछ वायरस है या तो कुछ बैक्टीरिया है। और किसी वैद्य से जाते हैं तो वो कहते हैं तेरी प्रकृति दे या तो वात पित्त कफ तीन में से एक का विकृति में आना हो गया है। और किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, तुझे ये ग्रह सता रहा है। और कभी भूत शास्त्री के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, तेरे पैर कुछ कुंडाले में गिर गया है। तेरा कहता ना कि भूत ने छाया पड़ी, ये अमेरिका में आके हमने देखा, यूरोप में भी जाके देखा कि जब बच्चा छोटा है तो उसके ऊपर भी काला पीला टीका लगाते हैं, उसके हाथ में काला धागा भी बांधते हैं। तो क्या मानते हैं, क्यों लगाते है, नजर लग जाएगा। तो नजर क्या होती है, नजर क्या होती है, महावीर कितने सुंदर होंगे जब जन्म हुआ तो कितनों की नजर लगी होगी, किसकी नजर ने महावीर का क्या बिगाड़ा। महावीर कहते हैं मेरा बहुत कुछ बिगड़ा, बहुत कुछ बिगड़ा, लेकिन उस समय जिम्मेदार मैं ही था। अगर मेरे ऊपर किसी की बुरी नजर लग सकती है तो मेरी इम्यून सिस्टम में कमी है। क्या है, ये संसार में जिसका कोई देरी न वो कोई इसका कुछ बिगड़ सकता है। सोचने वाली बात है कि हमारी भूल शुरू से ये सब कुछ है, मैं ऐसा नहीं कहती ये सब गलत बात है, वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, वास्तविक कफरुक कब की विकृति भी है और नेगेटिव नजर भी है, लेकिन इससे ज्यादा तेरी इम्यून सिस्टम में कमी है। तो कारण क्या है, जड़ क्या है, वजह क्या है? एलर्जी है, जैसे मेरी बात तो सुन, यहाँ धूप जैसे ज्यादा हो जाता है तो मेरी सांस में तकलीफ होने लगती है। तो ये गलती धूप की है, अगर धूप की होती तो आप सबको होना चाहिए। तात्विक रूप से अगर धूप में कमी होती तो हर एक को नहीं चाहिए, तो कमी किधर है? मेरी इम्यून सिस्टम है, मेरा रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं काम किधर करती हूँ? धूप को हटा दे, एक टाइम लिमिट है, एक टेम्पररी, कहाँ कहाँ से क्या क्या हटाएंगे? दुश्मन को मिटा दो, कैसे मिटाएंगे दुश्मन को? अंतराय को दूर कर दो, किसके किसकी कितनी कितनी अंतराय दूर करने के लिए कितने कितने उपाय करते रहेंगे? ज्ञानी कहते हैं कि जब तक तेरे पास कर्म है, जब तक तेरे पास अनंत के पूर्व जन्मों के वैर है, तब तक कोई न कोई निमित्त बन के आता रहेगा। जो उदय हो रहा है, जो अंदर हो रहा है, पीलिया चौंडी कमरा बोलते थे ना, तो कभी सभी को क्या दिखता था? सबको पीला दिखता है, येलो। उस समय ये चादर है, ये टेबल क्लॉथ है, हम बोलेंगे पीला है, हटा दो। वो कोई बोलेगा पीला नहीं है, मेरी अपनी आंख से देखते थे कि ये पीला है, मुझे पीला ही दिखता है, सही है, पीला दिखता है, गलत नहीं है, मेरा ज्ञान गलत नहीं है, मुझे पीला दिखता है। लेकिन एक चादर बदली करने से, एक टेबल क्लॉथ हटाने से, दूसरा व्हाइट रखने से क्या मेरी दृष्टि व्हाइट देखने लगेगी? तो हमको किसको हटाना है? चादर बदली करना है, चादर बदली करना है कि अपनी आंख में पीला दिखाने वाली जो वजह है, जो पीलिया है, जो जॉन्डिस है, उसको निकालना है। ये आज का दिन ये पीलिया निकालने का, इम्यून सिस्टम सुधारने का, अपना रेजिस्टेंस बढ़ाने का और अपने अनंत कर्मों का नाश करने वाला जो कार्य करना है, उसके लिए परमात्मा की आज्ञा है कि हम क्षमा धर्म को अपनी आत्मा का धर्म समझ के, अपनी आत्मा का स्वरूप समझ के, स्वभाव रूप है, इसलिए तो उत्तम क्षमा कहा गया है। क्या कहा है दिगंबर महामुनि ने उसको? 10 लक्षण के रूप में शब्द आगे लगाया है उसका, एडवर्ब उसका विशेषण, ये बन जाता है उत्तम क्षमा। तो उसको उत्तम क्यों कहा? हमने संसार में क्षमा तो बहुत की है, लेकिन हमारी क्षमा की वजह कभी उत्तम नहीं रही। ऐसे देखो तो जिससे हमको भय हो, जो हमें नुकसान कर सकता है, जो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, उसके साथ कुछ भी हो तो हम कैसे उसके साथ अपना बर्ताव यानी अपना व्यवहार जो है वो कैसे करेंगे? क्षमा करके ही करेंगे। कभी एक बार एक छोटे गांव में एक बाहर से रहने वाला आया था और उसके पास ज्यादातर कुछ भी धन नहीं था, तो वो थोड़ा गरीब सा था। तो उस समय उसके पास 2-4 बकरियां थी, गोट। वो जब बाहर बकरी को चराने जाता था उस समय वहाँ के कुछ ऐसे बल वाले लोग जो वहाँ के गुंडे कहे जाते थे, ऐसे लोग मस्ती भी कर लेते थे। तो ऐसे एक बार उसको हुआ कि मेरी किसी ने उसकी गोट पे रंग छिड़क दिया, तो उसको इतना गुस्सा आया कि मेरी बकरी को रंग डालने वाला होता कौन है, मैं अभी जाके उसको सीधा कर दूं। और अपने हाथ में बड़ी लकड़ी जिसको डांग बोलते थे, वो लकड़ी लेके गया और किसी ने बताया सामने एक घर दिखता है ना, वो आदमी ने निकल के तेरी बकरी पे रंग डाला था, अभी मैं उसको सीधा करता हूँ, मेरे पास धन नहीं है तो क्या है, मेरे पास ताकत है, मैं अभी जाके उसको समझाता हूँ। और जाके दरवाजा खटखटाया और जैसे दरवाजा खुला तो सामने जो व्यक्ति आया वो 6 फुट से भी ज्यादा लंबा था, इतना चौड़ा था और उसके घर में बंदूके तलवार ये सब दीवार पे लटक रहे थे और हाथ में भी बड़ा सा हथियार एक छुरा था। और उसने दरवाजा खोल के कुछ बोलने गया तो सामने क्या दिखाई दिया मनोज भाई? ऐसा आदमी दिखाई दिया। अभी वो क्या बोलने वाला है? क्या बोलेगा, आया था तो कैसे आया था, ऐसे आया था कि जैसे अभी उसको कुछ ना कुछ करके आऊंगा, लेकिन सामने जब भय आया तो हाथ छोड़ के बोले सर आप नए अलग से हो ये गाँव में, मैं तो नया हूँ, आपको मेरा पता नहीं है, मुझे भी आपका पता नहीं था, तो बोला क्यों आया है, क्या बोलेगा, आपको मारने आया था, आपको समझाने आया था, क्या बोलेंगे, ऐसे ही बस आपको मिलने आया था, क्षमा आ गई, ऐसी क्षमा तो हमने बहुत सी कर ली, जब भय होता है तो हम क्षमावान बन जाते हैं, और सिर्फ लालच है किसी से कुछ काम बनाना है, कुछ काम करना है, तब जाके वो कैसे भी हमारे साथ पेश आए, बिजनेस लेना है और वो आके बोलेंगे आज मुझे टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, हम क्या बोलेंगे, तुझे टाइम नहीं है तो मुझे भी टाइम नहीं है, जब उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं सर कल भी हो सकता है, तो उसके व्यवहार को क्या हमने क्षमा कर दी, नहीं किया है। और कहते हैं कि जहाँ राग होता है, जहाँ ममत्व होता है, अपने बच्चों के साथ हम कैसे पेश आते हैं, बच्चा चाहे कितना भी कतराए, कितना भी इंसल्ट करे, कितनी भी तकलीफें दे, लेकिन हमारा राग जो है हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। और यही बात अगर हमने बुजुर्गों से करनी हो, बेटा रात को 10 बजे उठ के मांगे माँ मुझे भूख लगी है, तो माँ से बोलेगी सुबह उठना कि खाना देगी, थाक नहीं लगेगा, तकलीफ नहीं होगी। अगर बड़े बुजुर्ग ने दिन में ऐसे कोई समय से कुछ काम सौंपा या कुछ डिमांड की, इतने बड़े हुए तो भी तमीज नहीं आई, हम दयालु है, क्षमावान है, विनयवान है, ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसका जो रूट है वो रूट गलत है, तो ये हमारा व्यवहार कभी द्रव्य रूप से दिखने में आए तो भी उसके व्यवहार से कुछ आत्मा को अपने स्वभाव में जाने का फल नहीं मिलेगा। तो परमात्मा ने धीरे धीरे करके इनका गौर करके, इनका ऑब्जर्वेशन करके हमारे लिए आज का दिन ऐसे बताया है कि आपको विकास करना है तो उसका एक तरीका है कि पहले आप शुरू करो कहाँ से, तो के जिसने मेरे जिसके मेरे पर बहुत उपकार है, जिसका मैं ऋण अदा करने वाला हूँ, उसका तो चाहे कितना भी अपराध हो उसके लिए हम कभी वो अपराध को अपराध नहीं गिनेंगे। तो सबसे पहले हम किसके उपकारी है, किसके ऋणी है, किसके ऋण, माता पिता के, सोचो कभी हमारे ऊपर इतने उपकार है कि हमारा अस्तित्व जो हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा शरीर का कण कण किससे बना है, हम इनके ऋणी हैं। अगर उसने जन्म देके रास्ते पे छोड़ दिया होता, अगर जन्म देके हमारी परवरिश ठीक से नहीं की होती तो आज हम कहाँ होते। तो पहली बात तो ये है कि जिसके हमारे ऊपर उपकार है उसके लाख अपराध भी हो तो अपराधों को अपराध नहीं समझना, उसने न जाने हमारी कितनी गलतियां माफ की होगी, छोटेपन में हमने कितना सताया होगा, कितना तकलीफ दिया होगा, ऐसे सब बड़े बुजुर्गों के रुदन के उसकी तकलीफों के ऐसे किस्से बाहर आते हैं, तब जाके क्षण भर के लिए समाज विचलित होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में उसका असर लंबा नहीं आता है। आजकल खरड़ा घर, खरड़ा घरनी शोभा, खरड़ा घरनी शोभा एटले नवा वृद्धाश्रमो बने, ओल्ड एज ना मानसो माटे सगवड़ वधे, એટલે આપણે એમ કહીએ કે હવે સમાજે ઘણો વિકાસ કર્યો છે। ઘરડા ઘરની શોભા છે કે ઘરડાઓ ઘરની શોભા છે? આપણને લાગે છે ઘરડાઓ ઘરની શોભા છે, લગતા હૈ કે ઉનકો ઉસકો કે છોટે સે છોટે રૂમ મે સબસે અનકમ્ફર્ટ બેડ મે બિછા દેના, ઇસ કમરે મે છોડ દેના। हम सबसे बड़े होने वाले हैं, हमारे बच्चे क्या देखेंगे, क्या करेंगे, कभी एक छोटी सी बात थी ना कि घर में एक मिट्टी का बर्तन रखा था और एक बार ये बर्तन टूट गया तो दादा रोने लगे, अरे बेटा ये बर्तन टूट गया, पोते के पास, ग्रैंडसन के पास। तो पोता बोला, दादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बर्तन टूट गया तो क्या है, ऐसे भी तो उनका मजे करता। नहीं बेटा, ये टूट गया तो फिर तेरे पिताजी के टाइम में दूसरा बर्तन लाना पड़ेगा। आज तेरे पिताजी मुझे जो बर्तन में दे रहे है वो बर्तन मुझे विरासत में छोड़ना था ताकि उनको भी ये बर्तन का लाभ मिले। ये दुख था, वेदना थी, ये बदला नहीं था। लेकिन ऐसी समस्याएं जब आती है तो हमें याद करना है हमारे अनंत उपकार, हमारे पर जिसके अनंत उपकार है, ऐसे माता पिता को, ऐसे बुजुर्गों को कभी दुख मत पहुंचाना। अगर आप जाने में अनजाने में कहीं भी गलती हो गई हो तो आज रो लेना, मन भर के रो लेना, उसको धो देना, गलतियों का एहसास करना, और ऐसी गलती दूसरी बार नहीं करेंगे उसका क्या करो, मन में पक्का निर्धार करो। न जाने कब चले जाएंगे, कुछ दिन है हमारे पास, पता नहीं कुछ सुनते है। हाँ, अपने बुजुर्गों का, अपने जिसके उपकारियों का उपकार नहीं चुका सकते, बुजुर्गों का एहसान कभी चुका नहीं सकते, तो उसकी गलतियां को भी माफ नहीं कर सकते। बोलते अभी इसका स्वभाव बिगड़ गया है, अभी इनके आदत से हम मजबूर हो जाते हैं, न जाने हमारा क्या होगा। जो 60-70 साल से इस परंपरा में बड़े हो रहे हैं, उनकी हर बात को हम बदली कर सकते हैं कि अपनी परंपरा तो बहुत छोटी है तो अपने व्यवहार को बदली कर सकते हैं, आसान क्या चीज है। तो परमात्मा ने बताया है कि पहले उपकार समाप्ति को, कम से कम उपकार, फिर इसके बाद जाके अपकार समाप्त। हमारे पर किसी का अपकार भी हो, किसी ने कुछ गलती भी कर दी हो, तो उसको याद रख के अगर हम रिवेंज लेंगे तो जाके क्या होगा। ये कोई विरासत नहीं है, ये कोई सज्जनों की या तो पढ़े लिखे लोगों की या तो संस्कारी लोगों की विरासत नहीं है कि ऐसे लोगों में क्षमा हो सकती है। अपकार का बदला कोई भी चुका सकता है। कभी ये घटना घटी है, ये सही घटना है कि सौराष्ट्र के छोटे गांव में एक सेठ जी को कोई संतान नहीं थी, तो वारसदार के लिए वो तरस रहे थे और कुछ बड़ी उम्र में उसको बेटा होने की संभावना हुई, यानी कि उसकी सेठानी को प्रेगनेंसी हुई। जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया तो गांव इतना छोटा था कि वहाँ हॉस्पिटल वगैरह होती नहीं थी, तो कुछ लेडीज जेने गुजराती में आपड़े सूती कर्म करावा वाला ये सुयानी कहिए, एटले के आया नर्स लेडीज एवी स्त्री हो, ये आदमी एने डिलीवरी करावे, एवी एक स्त्री आवे से और सेठानी का प्रसव करने की कोशिश करते है, लेकिन कुछ गड़बड़ होने से प्रसव नहीं हो रहा है। तब जाके जान की तकलीफ आ गई कि माता का जीना मुश्किल हो गया। तब जाके किसी ने बताया कि एक छोटे गांव में नदी के सामने किनारे पे कुछ बैकवर्ड क्लासेस रहते हैं हरिजन लोग, या तो ऐसे कम्युनिटी जो कोड़ी वादरी वगैरह शब्दों की रखता, ऐसे कुछ घर है वहाँ एक लेडी है जो इसकी जानकारी रखती है कि जिसके हाथ से हर एक की प्रकृति में अच्छे से काम बन जाता है। तो सेठ जी रात को निकले, रात के 10-11 बज गए थे, हाथ में फानस हरिजन, लाइटे नहीं थी, बारिश हो गई थी, कादो कीचड़ जम गए थे, उसमें से गुजरते गुजरते नंगे थे। सेठ जी वहाँ पहुँच गए और दरवाजा खटखटाया, एक लेडी आई बार, उसने अरे सेठ जी आप क्यों आए, काम होता एक आवाज भी होती, किसको भेज दिया होता, आपके घर आके खड़े हो जाते, आप तो हमारे सेठ है, आप तो हमारे उपकारी है, आपसे तो कई सारे अच्छे काम हो रहे है, ऐसा करके अपना विनय बताया। सेठ ने बोला जल्दी से मेरे साथ आ। उनके पैरों में जूते होते है, इन लोगों को नसीब नहीं होते जूते पहनने को, चप्पल नहीं होते है, वो नंगे पांव लेडी उसके साथ गई। वो घर जाके सिखाने के लिए बहुत सी मेहनत की, जितनी खुद को कला थी वो कला के जरिए उसने प्रसव करवा दिया और बेटा हो गया। और सेठ जी दौड़े, जल्दी से पूछा क्या हुआ। सेठ जी रास्ते में, सेठ जी चिंता कर रहे थे, कि न जाने क्या होगा, इस उम्र में मेरी वाइफ का देहांत हो जाएगा तो मैं तो गर्भभंग हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो वो बोलती है अरे सेठ जी भरोसा रखो ऊपर वाले से, ऊपर वाला बड़ा दयालु हुए, वो कुछ नहीं बिगड़ने देगा, मेरा भरोसा करो, मैं दोनों को बचा दूंगा। एक अज्ञान है, अनपढ़ है, ऐसी बेकवर्ड भी है, लेकिन स्त्री क्या बोलती है, भगवान बड़े मालिक है, वो सबकी रक्षा करता है, मैं कोशिश करूंगी मैं दोनों की जान बचाऊंगी। और गए और उसने ये ही किया, बेटा पैदा भी हो गया। और सेठ जी दौड़े किचन में और हाथ में ले एक डिश लेके आए, उसमें कुछ शक्कर थी मीठा, ले जमना, जमना नाम था, मीठा कर मुंह, मेरे घर में दिया वो चल गया है, मेरा वारिस जन्म चुका है, मैं खुश हूँ। और पॉकेट से दो नोट निकाली, 10-10 रुपये वाली, 20 रुपया, और जमुना के सामने हाथ लंबा किया तो जमुना सिकुड़ गई, हाथ जोड़ के बोली सेठ जी मीठा खाना तो छोड़ दिया है, शक्कर तो मैं खा नहीं सकती, और अभी ये पैसे की भी जरूरत नहीं है। दोनों नोट बच्चे के पक्ष उतार के बोली इसका कुछ अच्छा काम कर लेना। तब सेठ जी के पैर से जमीन खिसक नहीं लगी, उसको एकदम से याद आ गया, कुछ साल पहले यही जमुना का पति टपू जो एक दिन आया था सेठ जी के पैरों में गिर गिर आया था, सर से पगड़ी छोड़ी उतारी थी, पैर रो रो के धोए थे, सेठ जी मेरा ये वक्त ना गरीब लोगों ना नाम पर न था, गरीब ना बालकों ने नाम न हो, टपड़ो हो झीणो, बहुत पतला था तो झीण को नानो है तो उसको झीण को बोलते बोले ने कितने डगे है आवा नाम हो बालकों ने नाम पर नामकरण को थे सेठ लोगों को थे गरीब ना छोकराओ ने बचपन में नाम आपतु नहीं बोला मेरा तो बाई आई तो उसका टपू आया था सेठ जी मेरा जीना मारो बच्चू मारो दीकरो बीमार से लोग कहते जरूर हो गया है टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं तो मुझे 20 रुपये चाहिए उधार दे दो कैसे भी करके छुपा दूंगा। और सेठ जी बोले थे अरे ये टिटनस वाला धनुर वाला बच नहीं सकता, इसके पीछे इतनी बड़ी उधारी करता है, इतना पैसा कब चुकाएगा। उस दिन 4 आने में 1 दिन की मजदूरी चलती थी, इतना साल काम करेगा तू मेरे साथ तब जाके तेरे पैसे चुकते हो जाएंगे, चल ऐसे पैसे गवा मत, मेरे पास पैसे नहीं है। और वो रोते रोते टप्पू चला गया था और बच्चा मर गया था। वो 20 रुपये वाली बात सेठ जी तो भूल गए थे, लेकिन जब उसने दोहराया सेठ जी मीठा खाना उस दिन से छोड़ दिया है, अभी जन्म भर में हम कभी शक्कर गुड़ चखने वाले नहीं है, और अभी 20 रुपये की जरूरत किसके लिए, 4 आना रोज का कमा लेते हैं, 2 लोग तो है पेट भर जाता है रोटी से। उसको पता था जमुना को ये वही सेठ जी है जिसके जरिए ना होने से मेरा बेटा मरा था, तो भी वो कैसे आई और क्या किया उसने काम। तो ये संस्कार कहाँ से आते हैं, ज्ञाति से आते हैं, कहाँ से आते हैं, समझदारी से आते हैं। ये कोई किसी जैन होना ये तो नाम से जैन है, हमारे जीवन में बहुत कुछ देखना है, ऐसे कई उपकारों को हमने इस आज तरह जब जरूरत होती है तो उपकार को याद कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत निकल गई तो उपकार का किसी ने हमारे अपकार किए हैं ऐसा मानना ये कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा अव्यवहार है, क्या है धोखा है। कोई गलती करने वाला है ये सेठ जी भी वहाँ तो नहीं थी थे, लेकिन जमुना ने उसे ही पकड़ा था, वो ज्ञानी नहीं थी, लेकिन बोला मेरे कर्म में मेरे बच्चे का सुख नहीं होगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। और आज तक अपने मन में किसी के उपकार का किसी के अनुपकार का जो भी लिस्ट बना के रखा है तो ज्ञानी कहते हैं आज के दिन उसको क्या करना है उदार मन करना है। मन को क्या करते है उदारता भी नहीं है वास्तव में तो स्वभाव है, लेकिन हमको करना पड़ता है। तो अपकार क्षमा, पहली उपकार क्षमा, दूसरी अपकार क्षमा, और तीसरा है विपाक क्षमा। विपक्ष माने सब कर्म का उदय होता है। तो हमें इतना ही सोचना पड़ता है कि ये मेरे कर्मों का विपाक है। जब कच्छ कुमार जी के सर पे अंगारे रखे गए, खंडक मुनि के शिष्यों को पानी में डाल के इसको पीसा गया, तब उसने धर्म ध्यान की धारा से शुक्ल ध्यान तक पहुंचने में कौन सा मार्ग पसंद किया होगा, कैसे किया होगा। हमारा स्वभाव कैसा है कि हम घर में बैठे हैं और हम कोई वहाँ से बाहर से आवाज आई, एक बर्तन टूटा तो हमें आवाज सुनाई दी कि हमारा सबसे अच्छा वो क्रिस्टल वाला जो बिना से या टीशर्ट वगैरह जो हम अच्छे से अच्छे अपनी पसंदगी के लाए थे, वो नौकर यहाँ तो कम होते हैं लेकिन ज्यादातर ऐसे देखो कि काम उनको ही करना होता है, तो उनकी ठोकर से टूट गया और टूटने की आवाज आई। हम कहीं भी बैठे हो, हम क्या अब हम लोकना बचाइए, हम क्या आवाज लगाएंगे, देख के चल नहीं सकते, क्या बोलेंगे, देख के चल नहीं सकते। और दूसरी बार जब देखा तो बर्तन वहीं का वहीं एक पड़ा था और हमारी ठोकर से ही टूटा, तो हम क्या बोलेंगे। और अगर हस्बैंड है तो उसको भी बोलेंगे बेन कि थोड़ा देख के तो चलना चाहिए, और वही बर्तन अपने पैर में आया तो उस समय क्या बोलेंगे, किसने रख दिया था यहाँ, दूसरों को देख के चलना चाहिए। और अगर हमारी ठोकर लगी तो हम चाहेंगे कि किसने रख दिया इधर, और समझ लो कि अपने आप से अपने ही खुद वहाँ छोड़ा हो, तो फिर क्या कहेंगे, किसको तो उठा लेना चाहिए। बर्तन टूटा जिम्मेदार कोई और ही हो सकता है, हम नहीं हो सकते कभी। ये संसार में जो भी हो रहा है आज तक हमने जिम्मेदारी औरों के सर पे ठोक दी है, ताकि हम जब भी सोचते हैं ना तो हमारे मन में और ही होते हैं। जब तक हम किसी को क्षमा न कर दे, किसी को मन में रख के बैठे, तब तक एक दिन बुलाया मेहमान अपने घर में बगैर भाड़े से हमें के लिए रह पाए। आप जब तक किसको क्षमा कर न दो, जब तक किसी को मन से निकाल न दो, तब तक वो अपने मन का कब्जा करके बगैर भाड़े से अपना घर का यूज कर रहा है, ये कैसे हमको अच्छा लगेगा। एक बार निकाल दो, मन से एक बार निकल गया तो वो फिर मन में कभी आएगा नहीं। तो तीसरी क्षमा जो है वो विपाक क्षमा समझनी। ऐसा भी हुआ था, एक बार कैसे क्षमा करे, ऐसे कैसे सोचे, कुछ तरीका तो होना चाहिए। एक आदमी ने कभी किसी से कुछ मांगा, क्योंकि वो शॉपिंग के लिए निकला था और पैसे कुछ कम पड़ गए। ऐसा आप लोग तो ज्यादातर कार्ड से काम लेते हैं, इंडिया में होता है कि कई लोग ज्यादातर कैश से लेते हैं, तो 15-20 हजार कम पड़ गया, बड़ी शॉपिंग हो गई। तो बाजू में दोस्त का घर था, दोस्त के घर जाके उसने बोला कि दोस्त थोड़ी शॉपिंग बाकी है और 10-15 हजार की जरूरत है, अगर तेरे पास खुले है तो मुझे दे दे। दे दिया दोस्त ने, बड़े अच्छे दोस्त थे, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं था। दोस्त ने बोला कि मैं तुझे एक हफ्ते में वापस कर दूंगा। अरे घर की बात है, इसमें हफ्ते की क्या जरूरत है, जब याद आए चुका देना। ऐसा करके लेके चला गया, सामान दिया गया, घर भी चला गया। और घर जाके जब 8 दिन निकल गए तो उसके मन में आया, उसको क्या इतनी जल्दी है, वो तो करोड़ाधिपति है, वो मेरे 10 हजार से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जब उधर निकलूंगा तब जाके उसको चुका दूंगा। दिन चलते जाते मन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। उसने कभी रिमाइंडर नहीं दिया, बोला ये बड़ा आदमी है, 10 हजार आया तो भी क्या, जो पहले उसको क्या जल्दी है, बाद में आया उसको क्या फर्क पड़ता है, और अभी आया उसको न भी दू तो चल सकता है। ये मन बड़ा चुप्पा दुश्मन है, इसका भरोसा कभी मत करना। और ऐसे मन से काट दिया और वो 8-15 दिन महीना भर तो वो सोचता भी नहीं है, दोस्त है काम में होगा ये है, 1 महीने के बाद याद आता है, वो भूल तो गया है लेकिन आज तक एक फोन भी नहीं आया। कभी इतना भी नहीं बोल सकता है कि मुझे टाइम लगेगा, अभी मैं उधर नहीं निकल आया हूँ, ऐसा कुछ तो बोल देना चाहिए। कब्जा लिया, पहले दिया तो थोड़ा सा पक्का था कि मैंने किसी को दिया है। दिन निकलते गए, मन पे आ गया, फिर मन में आने लगा ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसको कैसे भूल जाना चाहिए। ऐसा करते करते मन का कब्जा हो गया, 6 महीने निकल गए। फिर तो 6 महीने तक वो मन में आके बैठ गया। आखिर में उसको थकान लगी, इसको मन से निकाल दूं, वो तो याद नहीं कर रहा है, चल जाके मैं याद करा दूं। एक बार फोन किया, कैसा है, क्या चल रहा है, सब जवाब में कुछ भी नहीं आया। अभी गुस्सा आने लगा, वो नहीं देने में शर्म नहीं करता है तो मांगने में मैं क्यों शर्म करूं। आज तो जाता हूँ और जाके मांग लेता हूँ। खड़ा हो गया सामने और बोला, याद है तो तूने मेरे से 10,000 रुपए लिए। वो चौकन्ना हो गया, एकदम से मन से निकाल दिया था नहीं देना पड़ेगा, और अचानक से सामने आ गया। अभी क्या करें, एकदम से मन पतित हो गया, नीचे उतर गया और ना मुकर गया। बोलते है बोला, कौन सी बात है, मैं तो ऐसा कभी करता नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। तुम देखा आज तक कभी कि मेरे जेब में पैसे न हो तो मैं शॉपिंग वॉपिंग कर, कुछ गलती हो गई याद कर, ऐसा किया। तब उसके मन में क्या होगा, एकदम गुस्सा आने लगा और वो तो वहां तक चला गया, इतना नीचे गिर गया कि बोला कि अरे मुझे याद आ गया कि तू बड़ा आदमी है, तू कभी मांगता नहीं है, लेकिन एक दिन तूने मुझसे पैसे मांग लिए थे। अभी क्या होगा उसको, आबला पकड़ गया, जैसा हो गया। और वो इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा गया, कभी इसको 2 थप्पड़ मार दूं या 2-4 दोस्तों को बोल दूं ये क्या कर रहा है, ये कैसा निकम्मा आदमी, कितना गिरा हुआ आदमी। फिर मन जरा सोचता है कि अगर 2-4 दोस्तों को बोलूं, ये तो अभी गया दिखता है, अभी वो तो बोलेगा कि मैंने लिया ही नहीं, उसने लिया है, तो 5 में से 2 दोस्त उसकी मानेंगे, 3 मेरी मानेंगे, लेकिन 2 दोस्तों के सामने तो मैं गिर जाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब किसी को भी बात करो, 5 आपकी बात मान लेंगे, उसकी भी बात मानेंगे ना, कुछ बोलना तो नहीं। अभी 2 थप्पड़ मार दू, थप्पड़ मारने से क्या होगा, अभी क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, पागल हो गया। कभी मन उससे वापस नहीं आता था। और आखिर में सेब से 10,000 निकाले, सेब से 10,000 निकाले, किसने, जिसके पास लेना था, जिसको लेना था, वो दोस्त ने सेब से और 10,000 निकाले। अच्छा दोस्त, मेरी गलती हो गई, मेरा उधार है, लेके जा। और अभी वो लेने वाले की हालत क्या होगी, अभी कौन आराम से सोएगा, नींद किसको आएगी, लेने वाले को या देने वाले को। तो इसने ये 10,000 रुपए में अपने पूरी जिंदगी की शांति खरीद ली। क्या कर लिया, गवाया क्या, 10,000 रुपया जीवन भर के लिए शांति खरीद ली। और उसने पाया क्या, 20,000 रुपया क्षणम भर वो करता रहेगा, कौन से सही की नहीं। अभी वो कैसे जिएगा, किस बोझ के साथ जिएगा, अगर जागते हुए न सोचे ना तो नींद में भी आएगा। गिल्टी कॉन्शियस ऑलवेज बाइट। तो ये 10,000 की कीमत ज्यादा या उसने 10,000 छोड़ा वो कीमत ज्यादा है। तो अपने जीवन में सीध छोड़ने से, क्षमा करने से आने वाली जो शांति है वो हर हाल में खरीद लेनी चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, हम क्या करते हैं, मन में पकड़ के बैठ जाते हैं, मन में पकड़ के विपाक क्षमा है कि जैसे हमारा कर्म का उदय है, कैसा भी करके मेरा लेन देन अधूरा होगा, कैसे भी करके मेरी कहीं गलती हुई होगी, तब जाके आज दूसरे 10,000 मेरे से निकल गए। ये सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते। दूसरी बात है कि जैसे दत्त कुमार ने अंगारे सर पे आए तो उसने सोचा नहीं था, उसको अगले जन्मों का जब ज्ञान हो गया कि जैसे भीष्म को दिखाई दिया था कि मेरे इतने जन्मों पहले की गलती से एक सांप को मैंने ऐसे काटे में फेंका था, तो उसकी वजह से मेरा आज ये हाल है कि मैं बांध तैयार हूँ। तो ऐसे दत्त कुमार को जब दिखाई दिया कि मैंने इतने साल पहले क्या किया था, इतने जन्म पहले एक निर्दोष बच्चे के ऊपर अपने हाथ से एक पकाया हुआ रोटी उसके सर पे बांधा था, कहानी आप जानते होंगे, इसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे तो उसको अपने आप से हो गया कि ये देना नहीं चुका रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैंने तो एक निर्दोष चीज से इतना बड़ा अपराध किया था, अभी मैं तो दोषी हूँ और मेरे सर पे आया है तो मेरा हक नहीं बनता है कि मैं उसको जिम्मेदार समझूं। तो ये स्वरूप क्षमा कही जाती है। किसको कहते हैं कि जिसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अंदर से रीजन होता है, क्लियर होता है कि गलती मेरी ही थी, वो अपराधी है ही नहीं, तो मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूँ। अगर किसी को अपराधी माने तो क्षमा करने की नौबत आती है, लेकिन जब कोई अपराधी है ही नहीं, अपने ही कर्म है, तो हमें क्षमा करने की जरूरत नहीं लगेगी। तो जिन शासन में ये सिखाता है कि आप स्वरूप क्षमा तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है कि हर चीज में अपनी गलती का देखना, ये अपने आप हो जाता है। जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, जैसे हमारी अप्रमत्त अवस्था आएगी, जैसे हम जागरूक बन जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ये भाव आएगा तो आप आखिर हमारी प्रारंभ की जो क्षमा है वो उपकार से शुरू होती है, अपकारी तक जाती है। इसके आगे जाके हम ये सोचेंगे कि आगे जाके हमको ये कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा मान के भी क्षमा कर दो, लेकिन यहाँ तक भी ये स्वरूप क्षमा नहीं बन सकती, ये प्रोसेस हो, लेकिन इसका फल क्या, इसका फल क्या कि क्षमा करनी नहीं पड़ेगी, आपका स्वभाव ही बन जाएगा। सिर्फ मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे स्वभाव में जाना आसान है कि विभाव में जाना आसान है। हम बोलते हैं कि गुस्सा करना आसान है, क्षमा रखनी मुश्किल है, ऐसा हमारा अनुभव ही है। गुस्सा सहज से आता है, क्षमा करनी पड़ती है। तो ज्ञानी कहते नहीं, गुस्सा करना पड़ता है, क्षमा सहज है, लेकिन चक्र उल्टा हो गया है। आप पानी को उबाल के देखो, पानी को उबालने में आग देनी पड़ती है, ईंट देनी पड़ती है, पानी को ठंडा करने में क्या करना पड़ेगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कुछ भी पुश नहीं करना पड़ेगा। तो क्षमा हमारा स्वभाव है और क्रोध हमारा विभाव है, लेकिन हमको तो आदत ऐसी होगी कि सच बोलना मुश्किल लगता है, झूठ बोलना आसान लगता है। एनर्जी किसमें खत्म होती है, अब सोचो कैसा है, जो हुआ कैसे हुआ, जब हुआ, ये बात बतानी है तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन कुछ बना बना के ऐसे बात कर दी हो तो हर टाइम याद रखना पड़ेगा कि मैंने उसको क्या बताया था, और सहेलियों को बोलना पड़ता है तू उससे मत बोलना कि मैंने ये कहा है, और जब वेरीफाई होता है तो पकड़े जाते हैं। तो ज्ञानी कहते स्वभाव में जाना आसान है, एक बार करके देखे, हमको तो भूखा रहने में तकलीफ होती है, खाने में मजा आता है, तो ज्ञानी को क्या होता था, खाने में तकलीफ होती थी, ये विभाव क्यों करूं मैं, मेरा शरीर का धर्म है, मेरी आत्मा को तो जैसे बताया जाता है भाई कि जिस दिन आपको खाना नहीं करना है, खाना नहीं पकाना है, तो उस दिन आप सुबह उठ के पूरा दिन के लिए आपके मन की शांति ज्यादा रहती है कि जिस दिन सब कुछ करना है उस दिन शांति ज्यादा रहती है। विकल्प किसमें ज्यादा आते, कभी 8 दिन के लिए भी हम कहीं निकले, हॉलीडे ले लिया, वेकेशन ले लिया और बाहर घूमने चले गए, सुबह उठ के न चाय बनानी है, न बर्तन बांधने है, न लॉन्ड्री करनी है, न कुछ काम करना है, तो बोलते कि आज बड़ा रिलैक्सेशन लगता है, क्या लगता है, तो वो तो सिर्फ जानते हैं कि 8 दिन नहीं करना है, सिर्फ 8 दिन न होने से भी इतना रिलैक्सेशन लगता है, तो वास्तव में ये न हो, ये झंझट ही न हो, ये समस्या ही न हो, तो कितना आसान होगा। तो साधुओं को शांति ज्यादा होगी कि हमको शांति ज्यादा होगी, हम बोलते वो बेचारे कितने कष्ट सहते हैं, क्या बोलते हैं, वो बेचारे कितने तकलीफ में है, बेचारे तो हम है, तकलीफ को बुला लेते हैं, तकलीफ को मोल लेते हैं, वो तो निजानंद में मस्त है, समस्याओं का अंत भागने से नहीं है, समस्या सुलझाने के लिए इग्नोर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हो और आपके पीछे कोई आया और आपका नाम गीता है और उसने समझा कि गीता जा रही है, पीछे से समान दिखते थे, तो उसने आवाज दी, रीटा रीटा, और आपको तो रिटा ही सुनाई दिया, तो आपने मुड़के नहीं देखा, लेकिन फिर से भी उसने पुकारा तो आपने मुड़के देखा कि मुझे तो कोई नहीं बुलाता है, लेकिन ये क्यों बुला रही है बार बार। तो आपको रीता कह दिया उसने, आप थे रीता, या तो आप रीता थे और रीता कह दिया, रीता थे और गीता कह दिया, तो आपने क्या किया उसके साथ, झगड़ा किया, इग्नोर किया कि नहीं? आसानी से इग्नोर किया, क्योंकि आप रीता नहीं थे, आप गीता थे, आप गीता थे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं। आपने सोच लिया कि वो गलती से मुझे उसने गीता कह के बुलाया। इसी तरह से अगर आपके बारे में किसी ने बता दिया कि आप झूठ बोलने वाले हो, आपको कभी कोई आके बोले गीता दे, आपको कोई आके बोले कि आपके बारे में सब बता रहे कि आप तो झूठ बोलने वाले हो, अरे मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये मुझे कैसे कह सकती, ये मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती, नहीं बोल सकती हो। इसके बोलने के लिए आप झूठा होना जरूरी है? आइंस्टाइन के बारे में आप जानते हो, मिस्टर आइंस्टाइन एक दिन घर में बैठे थे और उसके सामने उसकी वाइफ आई, अनेकांतवाद जो है महावीर का, वो आइंस्टाइन से नहीं आया, अनेकांतवाद था, लेकिन आइंस्टाइन ने साइंस में उसको अप्लाई किया, तब जाके हमने नाम जोड़ दिया कि सापेक्षवाद रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने बताई है। ये कितने भी साइंस है दुनिया के, सबकी रूट सबकी जड़ अध्यात्म शास्त्र में, महावीर के विज्ञान में एक भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल न हो। ये संसार इसके जरिए ये सब खोज रहे। तो मिस्टर आइंस्टाइन को उसकी वाइफ आई और उसने बोला, मिस्टर आइंस्टाइन योर सर्वेंट इज डोंकी, ये गधा है, गधा, इनके साथ में काम नहीं कर सकती, ये तो आपकी वजह से मैंने उसको रखा है। तो मिस्टर आइंस्टाइन बोले, यू आर राइट। क्या बोले? बराबर याद रखना, यू आर राइट। वो सुन रहा था सर्वेंट, जैसे वाइफ दूर गई वो आया, मिस्टर आइंस्टाइन योर वाइफ इज रिच, डाकिन है डाकिन, इसके साथ में नहीं रह सकता, ये तो आपकी वजह से नहीं। उतनी ही श्लोक सत्ता से मिस्टर आइंस्टाइन बोले, यू आर राइट, और वाइफ ने सुन लिया। अभी दोनों ने एक दूसरे की बात सुन ली, अभी आइंस्टाइन की अलग क्या हुई, दोनों सामने आ गए। मिस्टर आइंस्टाइन टुडे बहनों के ने बात आचार घूमता थी, आज तो नक्की करो, आज तो तुम्हारे नक्की करवो पड़ते, आज का वृक्ष हूँ बोली लगती, આનો અર્થ એવો છે કે આટલા વર્ષ હું ખોટી હતી, શું કરો, કોને સાચી કહો તો ખરા, કોને કહો દાદા, એમાં કઈ સમાવવાનું ન હોય, એવું પડે। મિસ્ટર આઈન્સ્ટાઈન આપકો પક્કા કરના પડેગા હમ મે સે સહી કોણ હૈ। સ્ટીલ મિસ્ટર આઈન્સ્ટાઈન ટોલ્ડ, યુ બોથ આર રાઈટ, નોટ પોસિબલ। अनु से हो क्या तुम रिच छो, राइट पूछे, आप बोलते हो वो सही है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं रिच हूँ। सर्वेंट बोला, आप उसको सही बोलते हो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं डोंकी हूँ। किसने कहा तू रिच है, किसने कहा तू डोंकी है? उसको तू डोंकी लगता है, वो उसका नजरिया है, उसको तो डोंकी लगे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसकी सोच है, और इसको तू वीक लगती है, तो ये सही नहीं है कि तू वीक है, लेकिन उसको लगे तो हम क्या कर सकते हैं? देखो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसको हम झूठे लगते हैं तो ये उसकी समस्या है, और उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। क्यों हम प्रूव करने जाते हैं, क्यों हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्यों हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं कि मैं वो नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, इतना भी कर लो, ध्यान दे दो, अगर वो नहीं मानेगा तो नहीं माने। महावीर ने क्या किया, गोशाले को समझाने गया, जमाली को समझाने गया, भगवान के सिर्फ श्रावक थे कुछ कम, जमाली के 5 लाख थे, भगवान के 2 लाख थे, नहीं थे, और जमाली के 5 लाख थे और पोसा लग के 11 लाख से भगवान ने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। मानने तो जो मानता है, हम क्या करते हैं जीवन भर, इसको समझा दो, इसके समझा दो, इसको मैं प्रूव कर दू। क्या प्रूव कर सकते हैं हम? अगर आप सही है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर आप गलत है तो भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, तो मान लो। हमारे पास सामने दो ही चीजें, संसार क्या कहता है, क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, वो हमारी समस्या है नहीं, वो उनका नजरिया, अपनो मापदंड, अपना मेजरमेंट इतना छोटा हो तो इतनी बड़ी हस्ती को कैसे माप सकते। हमारे लिए कोई कुछ भी बोले, अगर हम जिम्मेदार नहीं है तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, अगर हम जिम्मेदार हैं तो सुधर जाने की जरूरत है। कितनी आसान बात, कर सकते हैं कि नहीं? कभी एक कौवा किसी की खिड़की से देखा या तो विंडो पे देखा, को 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 कर रहा था, उसको उतार, आप वहां से उड़ाएंगे कि नहीं? कौवे को उड़ाएंगे, वहां से उड़ा और दूसरे की खिड़की पे देखा, वहां से भी उड़ाया, वहां से भी उड़ाया, 5-10 जगह से उसको उड़ना पड़ा, थक गया और जाके एक कोयल जा रहे थे, वो पेड़ पे गया, बोला कोयल ये गांव में तू कैसे रह सकती है? तो फिर क्या तकलीफ है, गांव वाले कितने बुरे हैं? तो फिर क्या बुरा है? तो फिर कोई मुझे बेचने ही नहीं देते, जहाँ बेचता हूँ सब भगा देते, सब भगा देते हैं मुझे, तो मुझे तो ये गांव छोड़ के, माया में छोड़ के ओरलैंडो चला जाना है। ओरलैंडो जाए या तो वर्षा बहन के घर चले जाए, क्या करे, जुपिटर चले जाए। कोयल ने जवाब दिया, कौवा भाई गांव बदलने की जरूरत नहीं है, आवाज बदली कर दो। अगर यही आवाज लेके कहीं भी गए, कहां से भी उड़ाएंगे, तो खराबी कहाँ है, बुराई कहाँ है, कहाँ है? अपने स्वभाव में है, अपने कर्मों में है, अपने भूतकाल में है, अपने अतीत में है, अपनी गलतियों में है। हम सुधार रहे हैं किसको? वर्तमान में जो उदय बन के निमित्त रूप आए हैं उसको बदली करना चाहते हैं। कर्कशता न छोड़ने वाला कौवा कहीं भी जाए वो धुतकारा जाएगा। अगर उसने कर्कशता छोड़ दी तो कोयल को क्यों कोई नहीं उड़ाते है? तो हमें ही दुख क्यों होते हैं, हमें ही तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ अंदर ही है, ये एक क्षमा की बात बहन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन हमने इसको ऐसा क्लिप बना दिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्यों होता है, ऐसे कैसे करना चाहिए, ये बात परमात्मा ने हमसे बता दी है। पिंजरा तो खुल गया पर पाख न खुली तो क्या, पिंजरा तो खुल गया पर पाख न खुली तो क्या, दिया तो जल गया पर आंख न खुली तो क्या। अंधेरा कब जाएगा, दिया जलाने से जाएगा कि आंख खोलने से जाएगा? पंछी स्वतंत्र कब होगा, पिंजरा खोलने से होगा कि पाख खोलने से होगा? हमारा प्रयत्न किसने गया है, निमित्तों को दूर करने में। अगर प्रिजन में किसी को डाल दिया और उसको कुछ कोड़े फटकारने की सजा दी, और जब जेलर उसको ये सजा का अमल करता है, तब जाके कोई भी उससे पूछ सकता है कि तू कौन होता है कोड़े मारने वाला, तू कौन होता है कोड़े वाला, मेरे मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? ये नहीं बिगाड़ा है, हम भी जानते हैं, तो वो क्यों कोड़े मारता है? तो जेलर उसको क्या जवाब देगा, मैं सजा का अमल करने वाला हूँ, मैं सजा करने वाला नहीं हूँ। तो बोला मैंने तेरा अपराध नहीं किया तो तू क्यों होता है? तो क्या जवाब देगा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है, कभी झगड़ा करना है तो जेलर से करना कि ऊपर जाके करना? जज को भी बोल सकते कि मैंने खून तो दूसरे का किया है, तू क्यों फांसी लटकाने की बात करता है? अपराध कहीं भी हो सजा अवश्य होगी, किसके जरिए होगी, कब होगी, वो तय करना कर्म सत्ता के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं। और अगर एक बार जजमेंट आ गया है तो क्या कर सकते हैं। कभी कोई केस चलती हो ना तो उसमें प्रोबेशन टाइम मिलता है, तो प्रोबेशन टाइम में निगोशिएट करना है तो कर लो, वरना जब जजमेंट आ गया कुछ नहीं चलेगी। और फरमान हो गया, केली को फरमान हो गया कि उसको 5 साल 5 महीना जो भी हो उसको प्रिजन में रखना है। और केली चालाक बनने को गया, 5 दिन पहले भाग गया, भागने में सफल भी हो गया और पकड़ा गया। अभी क्या होगा, 5 दिन की सजा लंबी हो जाएगी कम हो जाएगी? अगर चुपचाप रहा होता, अच्छे बर्ताव से, अच्छे सौजन्य से रहा होता, तेम कह रहे कि सारी चाल चल दक निकालने इन्हें 5 दिवस वेलो छोड़ देवा मारियो, तो हम सब कर्मों के पिंजड़े में बंधे, भागने की कोशिश करी तो समझ लेना सजा लंबी हो जाएगी। स्वीकार कर लो, उदय का स्वीकार कर लो, भागने से सजा लंबी ही होती है। इसको ज्ञानी कहते हैं कर्मों से भागना महावीर नहीं सिखाता, कर्मों को सह लेना, उदय को स्वीकार करना, वो भी अच्छी तरह से। जैसे परमात्मा जी बोले थे जब उसने दीक्षा ली, उस समय जो शब्द बोले थे सही स्वामी सही स्वामी, कर्म का उदय का मैं सहन करना कबूल करता हूँ, आज से जो भी कर्म उदय में आएंगे उसको मैं सह लूंगा। और दूसरे शब्द बोले खमी स्वामी, उसको मैं क्षमा करूंगा। और फिर बोला तितिक्षी स्वामी, तितिक्षा करूंगा। और अंत में बोला अहिया सही स्वामी। ये शब्दों आपको ऐसे लगेगा पर्यायवाची है, सबका मीनिंग एक है, लेकिन सबका मीनिंग एक नहीं होता, कभी दो शब्द एक होते ही नहीं है, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हरेक की अर्थ छाया अलग होती है, लेकिन ऊपर से एक दिखता है। तो सही स्वामी ने सहन करूंगा, अपने पन सहन करिए थी और हाई वोल करता करता करिए थी, चाहे पन कहीं बैठू पड़े इसलिए कोने मोकलू आ मने क्या थी भटकारा। शु बेन शु कहिए मने क्या थी भटकारा, फिर तारू जी नु बाकी एटले बिल कोने करे, गलत एड्रेस है तो बिल ने पाछी जाव पड़े, अपने भरव न पड़े, पर राइट एड्रेस थी आयु तो मेरे घर क्यों बिल आया, खरीदी तुमने की तूने की थी तो बिल तेरे घर ही आएगा। हाई वो ही नहीं करूँ, खमी सामी सही सामी सॉरी सहन करी, पर केवी रीते हाई वो ही करी आदिना, खमी सामी क्षमा करी, केवी रीते मारो अपराध छे, मारो अपराध छे, हूँ हकदार नथी के ने सामे सजा करू, एटले हूँ शू करी दऊ छु क्षमा राखी, एटले के मारा मा प्रतिकार नहीं करू। पछी के तितिक्षी स्वामी, तितिक्षा करीश खेद विना, दुखी नहीं था अपने तो भोगवता जाइन पाछा के कोने कहिए, बराबर छे, પાછા કે આગામ માં આદેશ માં કોઈ કેવાય એવું છે, એક ને કેવા જતા આગામ માં ચક્રાવે ચડાવે, અહીં તો કોઈ આગળ મોઢું ન ખોલાતું, મોઢું ખોલાયું હોય તો આપડે કેટલી જગ્યાએ ખોલી નાખ, આમ તો બધા ને કેતા જાય, તમને એક ને જ કહું કે બધા થોડું કેવાય, આવું એક ને કેતા કેતા એક વાર એવો ગોટો થઈ ગયો તો એક ગામ માં સ્વામી વાત્સલ્ય હતું, અને સ્વામી વાત્સલ્યમાં સકર સંઘને જમવાનું હતું, એમાં બરાબર એક ભાઈ ને અજીર્ણ નો રોગ થયો, એટલે એને કશું પચે નહીં, ખેડી ખાય એનું ડાયરિયા થઈ જાય, ને ખબર પડી હતી કે આજે તો બદામ નો શીરો જમાડવાના છે, ભાઈ ને ઘણા વખત છે અજીર્ણ ના કારણે બધી પૌષ્ટિક વસ્તુ સારી વસ્તુ ખાવાની મનાઈ હતી, આજે તો હવે સંઘ હતો એટલે કે વૈદ્ય બાપા આજનો દિન જમવાનું, આજ તો બદામ નો શીરો છે, આજે તો સંઘ ની શેષ લેવા જવું જ છે, સંઘ ની શેષ કેવો એટલે કેટલું તો લેવું જોઈએ જરાક, તો હવે વૈદ બાપા બોલે છે શીરો ઝેર છે, શું બોલ્યા, શીરો ઝેર છે, ખબરદાર ગયો છો, તો મરી જવું જ, મરવાનો જો ખાધો તો મરવાનો, એક જણાય સાંભળ્યું, એને વિચાર એવો કે વૈદ બાપા પછી ખોટું બોલે, ગામ ના પ્રતિષ્ઠિત વૈદ્ય જરૂર કઈ જોખમ છે. આપડે તો નથી જવું, પણ ઘરવાળા ને કહી ગયો, એટલે વાઈફ ને કીધું જમવા નથી જવાનું. તો કે કેમ? તો કે સીવા માં ઝેર છે, ખાઈ તો મળી જાય. એટલે વાઈફ કે ખાતી સાહેબ તો કાનો કાન સાંભળું છે, કાનો કાન સાંભળ્યું છે કે શીરામ ઝેર છે, ખાઈ તો મળી જાય. શીરો નહીં શીરા માં આવી ગયું, શબ્દ આટલો જ બદલ્યો. એટલે વાઈફ ને ખબર પડે એટલે એમ બેન ને ફોન કરી લઈને આવીએ. તો કે તારી બેન ને કે તો ભેગા ભેગું મારી બેન ને કહી દે, બે બહેનો આગળ પહોંચી. તો બેન ને પાછું કોઈ પોતાનું હજી જોયું ને, એટલે એને બીજા ચાર જણા ને કીધું, ચાર જણા ને પાછા એક એક હોય એ બીજા આઠ જણા ને પહોંચી. જમવાનો ટાઈમ થયો અને કોઈ જમવા જ ન આવ્યું. જે બિચારા સ્વામી વાત્સલ્ય ના દાતા હતા અને સંત પ્રત્યે સમજાઈ ગયા, શું તે પણ કોઈ કેમ જમવા નથી આવતું, આટલી રસોઈ તૈયાર છે, બધી તૈયારી છે. કોઈ એકબીજાને પૂછે છે કે સ્વામી વાત્સલ્ય કરનારા આયોજકો અને સ્વામી વાત્સલ્ય ના દાતા, આ શું થયું? તો ખબર નથી, પણ કોઈ આવ્યો નથી. તો કે ભાઈ ક્યાંથી તો મૂળ કાઢો. તો એકાદ જણા ને પૂછ્યું, વળી નજીક નું હતું, એટલે કે જુઓ ભાઈ અમને તો સમાચાર મળ્યા છે કે શીરામાં ઝેર છે. તો કે અરે શીરામાં ઝેર નાખીને કોઈને મારવાનો વિચાર હોય, આ તમે કેમ માની? ના, જેને કીધું ને એને ઓથેન્ટિકલી કીધું છે. કેવું કીધું? આ બધું આપણે ઓથેન્ટિક જ બોલ્યો. અને આપણને ફોન આવે ને તો એક વાર પૂછવું જોઈએ કે આ વાત સાચી છે, તો શું જવાબ દેશે? ખબર નથી પણ મેં તો સાંભળ્યું છે, એટલે તરત જ પૂછવાનું આપણે કે આ વાત મારા કામની છે. આપણને કામની વાત કહેવા વાળા ફોન કેટલા આવે છે? આપણે એની સાથે લાગતું વળગતું હોય એવા ફોન કેટલા આવે? મારા તમને ખાતરી નથી કોણે કીધું છે, બન્યું છે કે એની કોઈ ઓથેન્ટિસિટી નથી, તે માત્ર સાંભળ્યું છે અને મને એનાથી કોઈ ફાયદો નથી, તો હું શું કામ સાંભળું? આપણે ત્યાં બોલ બોલ શું થયું પછી? અને વાત ચાલે તો કેટલી લાંબી ચાલે, ઘણી વાર દૂધ પણ ઉભરાઈ જાય, અહીં તો ભાગ્ય જ ગરમ કરવાનું હોય. પણ હમણાં ડોક્ટર કહેતા હતા કે આજકાલ અમારે અમુક કેસ બહુ વધી ગયા છે. તેના તો કે ગરદન ના દુખાવાના. શું કામ? તો કે ફોન આમ રાખીને કામ કરે છે ને, પેલા છે ને લેન્ડલાઈન હતી, એટલે તમે જુઓ બેન રસોઈમાં વાસણ માંજવામાં ડીશ ધોતા હોય ત્યારે ફોન ક્યાં પડ્યો છે? અત્યારે જરા ફ્રી છું, વાસણ ધોઉં છું, લાજ છૂટા છે, એટલે પણ ખબર રહેશો. હવે સેલફોન તેના સ્ટેન્ડ રાખવા પડે છે, કારણ કે હાથમાં રાખે તો આ કામ કેવી રીતે કરે? એટલે કહેવાની વાત એ છે, આખરે મૂળ મળ્યું કે ક્યાંથી મૂળ આવ્યું હતું, કે વૈદ કે છે વૈદ બાપા સુધી વાત આવી, સંપત્તિને હાથ જોડતા આવ્યા કે વૈદ બાપા અમે શું ગુનો કર્યો છે કે તમે આખા સંઘને ભડકાવ્યો, તમને કોણે કહી દીધું ઝેર છે? વૈદ બાપા કે હું ક્યાં કીધું કે શીરામાં ઝેર છે? પર્ટિક્યુલર પર્સન ને કીધું તું કે તારા માટે શીરો ઝેર છે, ચોકન્ના રહેજો, જાગૃત રહેજો, ધર્મમાં આવી બધી વાતો ધર્મ બનીને આવી ગઈ છે અને ધર્મ બનીને આવી ગઈ છે. આ તો ખબાની વાત ચાલી રહી છે. કહેવાની વાત આપણે એ છે કે આ રીતે ખમી સામી, સહી સામી, તિત્તિખી સામી અને છેલ્લે કે છે અહિયા સહી સામી, અહિયા અતિ અતિ આનંદપૂર્વક હું સહન કરી લઈશ. ભગવાનની પ્રસન્નતા, ભગવાનની મુખમુદ્રા જુઓ. આટલા પરિશ્રમ વેઠવા છતાં આપણું શાસ્ત્ર કહે છે કે પરમાત્માના ચહેરા ઉપર ક્યારેય પણ એક રેખામાં બદલાવ નથી આવ્યો. ખાલી શારીરિક ધર્મથી એક વખત શીશ નીકળી છે, એ શરીરના પૂજગલોની પ્રકૃતિને કારણે. જયારે કાનમાંથી સૂળ કાઢીને, એ પાકેલા કાનમાંથી જયારે વૈદે સૂળ કાઢી, તે વખતે એક અવાજ નીકળ્યો. એના કારણે કહેવાય છે કે પથ્થરમાં પણ આખા પહાડમાં તિરાડ પડી ગઈ. એટલે એ તિરાડ પરમાત્માની વેદનાનું આપણને શું કરાવે છે? માપદંડ બતાવે છે કે આટલી વેદના વેચતી વખતે પરમાત્માથી ભૌગોલિક ધર્મને કારણે વેદના, એ માનસિક પીડા નહોતી, શરીરના ધર્મને કારણે. આપણે રોજ પરમાત્માને પૂજા કરીએ છીએ, એની પાસે બેસીએ છીએ, અને પરમાત્મા ની પાસે બધું માંગીએ છીએ, તે આમ કર્યું, મને આમ કરવું. તો હવે ભગવાન ને કેવું છે કે ભગવાન આ કાનમાં ખીલા ઠોકાય અને તે જે વેદના સહી લીધી, એ વેદના સહી કરવાની, સહન કરવાની તમારી તાકાત નથી, પણ કાનમાં શબ્દ પડે ને તો સહી લો, એટલું બળ મને આપ. શું માંગવાનું છે બેન? આ શબ્દ કાનમાં આપણે વેચી નથી શકતા. કોઈને ભગવાન આગળ જેવું શું માંગ્યું? અંગીના દર્શન કર્યા, અંગના દર્શન કર્યા, કે આત્મ દશાના દર્શન કર્યા. ધીમે 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 ધર્મ, જૈન ધર્મ સુરતા તરફ કરતી રહે છે. હીરા મોતી ની આંગી, ચરકસી સામા, આ લાઈટનું, આ બધું કયા લેવલ ઉપર લઈ જશે આપણને? ધર્મ માં શું શું નથી આવી ગયું? તત્વભાગ સત્વભાગ નીકળતો જાય છે, અને દેખાદેખી આડંબર સ્પર્ધા અને એકબીજાની ચર્ચા છે. આ બધા માંથી આપણે હિંસાસન ને બચાવવું છે. થોડાક જાગૃત રહીશું. કોઈ વસ્તુ એકવાર એન્ટર થઈ ગઈ તો પછી કાઢવી નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. શાસન રક્ષકો છો, શાસનના જાગૃત સેવકો છે. દરેક વસ્તુની મર્યાદા સમજવાની છે. તો પરમાત્માના માર્ગમાં મર્યાદા ધર્મ છે. આણા એ ધમો, ભગવાને કીધું મારી આજ્ઞા એ જ મારો ધર્મ. પરમાત્માનો ધર્મ પરમાત્માની આજ્ઞામાં છે. વેશભૂષામાં નથી, કેશભૂષામાં નથી, દેખાદેખીમાં નથી, દ્રવ્ય ક્રિયામાં માત્ર નથી. દ્રવ્ય ક્રિયા તો આત્માનો વૈભવનો ઇનપુટ આઉટપુટ રૂપે બહાર આવે છે. ત્યારે આપણે આઉટપુટમાંથી ઇનપુટમાં જવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો આવા માર્ગમાં પરમાત્માએ મને ને તમને જે પ્રમાણે માર્ગ બતાવ્યો છે, તે માર્ગની અંદર જેવી રીતે આપણે જાણતા હતા કે જેસલ જાડે જો સાંભળ્યું છે ને, લખતા પાપ તારું પરકાશ જાડે જા, ધર્મ તારો સંભાળ રે, તારી બેડલી ને બુડવા નહીં દઉં, એમ તોરલ કે છે. આ તોરલ એટલે આપણો આત્મા, અને જેસલ એટલે આપણા યોગ, મન વચન કાયાના યોગ. આજે આપણા મન વચન કાયાના યોગ થી આ જેસલ જેટલા પાપ આપણે કર્યા છે, કે છે કે જેટલા માથાના વાળ તોડી રાણી, જેટલા માથાના વાળ રે, તેટલા અકર્મ તો મેં કર્યા. શું કે છે? કે જેટલા માથાના વાળ છે ને, એટલા અકર્મ મેં કર્યા છે. તો પણ તોરલ એને કે છે, પાપ તારું ઉપર કાશ જાડે જા, ધર્મ તારો સંભાળ. બોલવા માટે, બોલવા માટે, પાપનો પ્રકાશ કરવા માટે. આ તારી નાવને હું બુડવા નહીં દઉં. આત્મા કે છે એકરાર નો દિવસ છે. આજે આપણે એકરાર કરવો છે. એક્સક્યુઝ નહીં, આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં, વકીલાત નહીં, માત્ર કબૂલાત. હું આવો છું જ, અને તારી બેડેલી ને બુડવા નહીં દઉં. આ સમાપના નો દિન આપણને કે છે આપણને બુડવા નહીં દે. અનંતા અનંતા ભવથી કરેલા કર્મો એક જ પળની અંદર આપણે નાશ કરી શકીએ એવું ભવ છે. પણ આપણા કવિઓ કેવા હતા? તત્વજ્ઞાની હતા. કે છે, ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો, સળગી આભ અટારી, પણ જામગળીમાં તણખો ન પડ્યો, ન સળગી એક સગડી બારી, એક જ દેહથી નગારી મહાન અલ, એક જ દેહથી નગારી. શું કે છે? ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો, આખી આભ અટારી સળગી, પણ મારી જામગળીમાં, પેલા બંદૂક હતી ને એમાં પોટાશ કરતા દારૂ, એમાં એક દિવસ સુધી મૂકે એટલે એનો ગોળો શીખે. આખી સામગ્રીમાં એક તણખો ન પડતો. આ બધું સળગી ગયું. અનંત જીવો પાપ કરતા સળગાવીને મોક્ષમાં વહી ગયા. આજનો દિવસ ચિંગારી માગવાનો દિવસ છે. આપણા આત્મામાં આવી ક્ષમાની ચિંગારી પ્રગટે, અને આપણે પણ પરમાત્માના માર્ગે ચાલી અને આપણા આત્માને ક્ષમા કરનારા બનીએ. સૌથી મોટા અપરાધી આપણે કોના છીએ? આપણા આત્માના છીએ. જગત તો પછી છે. આ બધું સહન કર્યું, બધું વેચ્યું, બધું જે કઈ આજ સુધી આનંદ પરિભ્રમણ કર્યું, એ આપણા આત્માને આપણે કરાવ્યું છે. આવા બહિરાત્મા એ અંતરાત્મ દશાને હંમેશને માટે હરાવી છે. તો આજે અંતરાત્મ દશાનો વિજય થાય એવી ભાવના સાથે આપણે સમાધિને ઉજવીએ, અને આ પરમાત્માની વાણીને સમજતા કે સમજાવતા મારી મંદ મતી કે બુદ્ધિના અલ્પ ક્ષયોક્ષમથી, નાનીના જ્ઞાનથી ઓછું અધિક વિપરીત કઈ કહેવાયું હોય, તો અનંત અનંતિત કેવડી ભગવાન ગુરુદેવો આત્માની સાક્ષી, આપ સૌની સાક્ષી, તસ્મિત શામી શુક્રમ. આખા આપણા પરિસરની આરાધનાના દિવસો દરમિયાન 8 દિવસના મારા સ્વાધ્યાયમાં તેમના સાથે રહું છું. એ બધાના ઘરે રહેવામાં, સકળ સંત સાથેના મારા વ્યવહારમાં, મારી વાણી વર્તન કે કોઈ પણ પ્રકારે સમજદારીના અભાવથી કહો કે અજ્ઞાનવશ કે પ્રમાદવશ કોઈ પણ પ્રકારે અવિનય થયો હોય તો સકળ સંતને હું હાથ જોડી, માન મોડી, મસ્તક નમાવી, પંચંગ નમાવીને પૂજો પૂજો કરીને ખમાવું.
સર્વમંગલમ સર્વસંજ્ઞાનકારણમ પ્રદાનમ સર્વધર્માણામ શૈલમ જયતિ શાસનમ. બોલો ભગવાન મહાવીર સ્વામી કી, જૈન શાસન દેવ કી, સદગુરુ દેવ કી. પ્રણામ થઈ ગયું.